सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला करने के 8 कारण, जिसमें से हम तीसरे कारण पर हैं, तीसरी शिक्षा। भगवान ने गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु ये पूरी गोवर्धन लीला रचाई, और पिछले रविवार हमने इस शिक्षा की शुरुआत की थी कि भगवान की नजरों में पूजनीय कौन है। भगवान ने गोवर्धन को पूजनीय बनाया, और वो भी तुलनात्मक तरीके से। किनसे तुलना? देवराज इंद्र। वही दिन, वही सामग्री, परंतु पूजनीय भगवान ने गोवर्धन को समझा। और न केवल भगवान स्वयं गोवर्धन को पूजनीय समझे, बल्कि भगवान ने नंद महाराज से लेकर पूरे ब्रजवासी गण, सारे वृंदावन को इस बात को समझा दिया, और सभी इस निर्णय पर आए कि गोवर्धन पूजनीय है। श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर परिभाषा दी है कृष्ण भावनामृत की। कृष्ण भावनामृत का एक अर्थ श्रील प्रभुपाद ने बताया, भगवान श्री कृष्ण की नजरों से इस पूरे संसार को देखना, उनकी दृष्टिकोण से दृष्टि रखना। दिस इज वन डेफिनेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब देखिए दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण बताया जाता है, विशेष रूप से हम मनुष्यों के लिए, मनुष्य समाज में, कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो कल्पना कीजिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दृष्टिकोण, एक दफा एक राजा ने एक बहुत गहन प्रश्न अपने मंत्रीगण से पूछा कि भगवान जो होते हैं, भगवान का डेली जॉब क्या है, दैनंदिन कार्य क्या है भगवान का। ऐसे तो बहुत कुछ सुना है कि भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान पालन करते हैं, परंतु एक होगा कि डेली वर्क, व्यवसाय क्या है उनका रोज का। तो अब राजा ने पूछा है तो सब लग गए कि शास्त्रोक्त उत्तर देना है, तो अलग अलग शास्त्र अध्ययन करने लगे, खोजबीन करने लगे, नहीं किसी निष्कर्ष पर आए। तो जो उनके महल का पुरोहित पंडित था, तो राजा ने उनसे पूछा, तुम बताओ, क्योंकि तुम यहां पर सबसे विद्वान हो, तुम्हें नियुक्त किया गया है, सबसे विद्वत सभा के तुम सरदार हो। तो उसने एक दिन मांगा। राजा ने कहा मैं 2 दिन देता हूं। एक क्या? 2 दिन देता हूं। यदि 2 दिन में तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग। अब ये परेशान, एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा है, ये इतने टेंशन में। तो ये जो पंडित, इनका छोटा सा लड़का, उसे जब पता चला कि मेरे पिताजी कौन सी दुखद परिस्थिति में गिर गए हैं, तो ये छोटा सा लड़का, इसने कहा कि पिताजी ऐसा कीजिए कि परसों जब राजा आपको बुलाएगा आह्वान देगा आपको बुलाने का, आने का, तो आप मत जाना, मैं जाऊंगा राजा के उस प्रश्न का जवाब देने के लिए, मैं जाऊंगा। तो पिताजी ने ठीक है भेज दिया अपने छोटे से पुत्र को। तो यहां पर अब राजा प्रतीक्षा में सुबह के समय जब सभा खुलती है तो उसे अपने उस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो ये पंडित जी तो नहीं आए, इसके बदले छोटा सा इनका लड़का आया है। लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी ऐसे साधारण से प्रश्न का उत्तर नहीं देते, इसलिए उन्होंने उनके परिवार का सबसे साधारण सदस्य को भेजा है यहां पर, जो कि मैं हूं। क्योंकि आपका प्रश्न भी बहुत साधारण है, इसलिए मैं एक साधारण सदस्य उस परिवार का आया हूं जवाब देने के लिए। पूछो, फिर से पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? तो राजा, उसने देखा कि ये छोटा सा बालक और इस प्रकार से अपने आप को पेश कर रहा है, तो राजा अब प्रश्न पूछने ही वाला था। तो इस बालक ने कहा, रुक जाओ, ऐसा करो, पहले आप अपने सिंहासन से नीचे उतरो और मुझे सिंहासन पर बैठने दो, तब जाकर मैं जवाब दूंगा आपके सवाल का। तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा था राजा के लिए ये क्वेश्चन और इसका आंसर। तो ठीक है, राजा ने, ये ब्राह्मण का पुत्र है तो राजा ने स्वीकृति दे दी। राजा उतरा सिंहासन से नीचे आया और इस छोटे से बालक को सिंहासन पर बिठाया। सिंहासन पर बैठकर अब ये छोटा सा बालक राजा से पूछता है, अब आप पूछिए कौन सा वो था आपका प्रश्न जो आपको सता रहा था। राजा पूछता है, मेरा प्रश्न यही था कि भगवान का दैनिक कार्य क्या है, व्हाट इज द डेली जॉब ऑफ गॉड। इस छोटे से बालक ने कहा, यही है। राजा समझा नहीं, यही है मतलब, यही है भगवान का दैनिक कार्य। आप जैसे घमंडी राजाओं को सिंहासन से नीचे उतारना और हम जैसे साधारण को सिंहासन पर बिठाना, डेली भगवान यही करते रहते हैं, जो घमंडी होते हैं उनको उतारते रहते हैं और जो साधारण हैं उनको चढ़ाते रहते हैं। तो भगवान के नजरों में पूजनीय कौन है? बहुत, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि कौन सा सवाल हमने लिया, भगवान का दैनिक कार्य क्या है, तो भगवान के नजरों में पूजनीय कौन है, हु इज वर्शिपेबल इन द आईज ऑफ कृष्णा। ये एक मापदंड है, दिस इज द बेंचमार्क, जैसे होता है ना आईएसओ स्टैंडर्ड। तो विशेष रूप से हम वैष्णवों के लिए भगवान श्री कृष्ण वो हमारे आईएसओ स्टैंडर्ड है, वो हमारा मापदंड है कि हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण पूजनीय है। और भगवान के लिए जो भी पूजनीय हो जाता है वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। जैसे कि जानवरों में, अब इतने सारे जानवर हैं, इतने विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, इन सब में हम कौन से को पूजनीय मानते हैं? गाय को, हम गाय को पूजनीय मानते हैं, हम जानवर मानते ही नहीं गाय को। जैसे एक साधु से पूछा गया कि भाई आपके भारत देश में कौन से जानवर का दूध उत्कृष्ट है, तो साधु ने कहा भैंस। तो पूछा गया, भाई आप तो साधु हो, वैदिक संस्कृति का पालन करने वाले हो, आपने भैंस क्यों कहा? मैं तो इस अपेक्षा में था कि आप गाय कहोगे। तो साधु ने कहा, क्योंकि गाय को हम जानवर नहीं मानते। तुमने क्या पूछा था? कौन से जानवर का दूध उत्कृष्ट है? गाय को हम पूजनीय मानते हैं, गाय को हम हमारी माता मानते हैं। तो भगवान ने गाय को पूजनीय किया, अपना एक नाम रख लिया, गोपाल, गोविंद। इसलिए हमारे लिए गाय पूजनीय हुई। भगवान ने मोरपंख को अपने मस्तक पर धारण किया है, तो हमारे लिए मोरपंख पूजनीय। भगवान ने तुलसी दल को पूजनीय माना, तो हम भी तुलसी की पूजा करते हैं। भगवान में पर्वतों में गोवर्धन को पूजनीय, तो हम भी गोवर्धन की पूजा करते हैं। भगवान ने ड्रिंक्स में छाछ, भगवान ने कोको कोला नहीं पिया। इसलिए भक्तों को भी क्या पीना चाहिए? इकोनॉमिकल भी है, सेहत के लिए भी अच्छी। अब देखिए, व्यवसाय, कितने सारे व्यवसाय होते हैं। आजकल लोगों से पूछो तो गर्व से लोग बोलते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं हम, मैकेनिकल इंजीनियर हैं हम, PhD हैं हम, डॉक्टरेट हैं हम, ये हैं। भगवान से पूछा जाए कि भगवान ने कौन सा व्यवसाय अपनाया जब भगवान अवतरित हुए? कृषि गोरक्षा। बलराम जी कृषि के प्रति, किसान और ग्वाले, कृषि गोरक्षा। आजकल लोगों को पूछो, यदि सही मायने में भी कोई किसान है तो शर्म आती बोलने में कि मैं किसान हूं। किसान केचप खाने में अच्छा लगता है। परंतु किसान अपने आप को बोलने में शर्म आती। तो भगवान भी इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर आ सकते थे। क्यों भगवान ने यह व्यवसाय चुना? क्योंकि भगवान दर्शाना चाहते थे कि न केवल हमारे भौतिक आवश्यकताओं को यह व्यवसाय पूरा करेगा, कृषि गोरक्षा, बल्कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। कृष्णा चूजेस काउ, कृष्णा चूजेस पीकॉक फेदर, कृष्णा चूजेस गोवर्धन, कृष्णा चूजेस यमुना, कृष्णा चूजेस बीइंग अ काउहर्ड बॉय। Everything what Krishna chooses becomes worshipable for us. हमने हाल ही में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाई। जगन्नाथ जी का एक बहुत सुंदर नाम है, बहुत से विभिन्न नाम है जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण हैं। जगन्नाथ जी का एक सुंदर नाम है बंधन प्रिय ठाकुर। इसका अर्थ क्या होता है कि वो ठाकुर, वो भगवान जिनको बंधन प्रिय है। अब देखिए, हम लोग सब बद्ध जीव हैं, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण, उनको ये एक नाम, ये उपाधि दी गई है बंधन प्रिय ठाकुर, कि वो अपने प्रिय भक्तों के बंधन में रहना पसंद करते हैं सबसे ज्यादा। दामोदर लीला में, माता यशोदा के बंधन में, और उनका गुणगान उस प्रकार से होता है, भक्ति बद्धम, पूजनीय है वो रस्सी, रस्सी पूजनीय हो जाती है, उखल पूजनीय, जो भी कुछ भगवान के उस बंधन से संबंधित है पूजनीय। तो भगवान का इनाम है बंधन प्रिय ठाकुर। तो भगवान जिस भक्त को पूजनीय मानते हैं, भगवान जिन प्रामाणिक वैष्णवों को पूजनीय मानते हैं वो हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इतने पार्षद हुए जब वो इस धराधाम पर थे। एक उनके पार्षद, उनका नाम था सत्यराज खान। तो क्योंकि उस समय मुसलमानों का काफी प्रकोप था इसलिए इस प्रकार के नाम हुआ करते थे, रामचंद्र खान, सत्यराज खान। परंतु ये सत्यराज खान भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इतने अनन्य भक्त थे कि ये जिस गांव से थे चैतन्य महाप्रभु को सत्यराज खान का गांव पूजनीय हो गया। तो एक बार सत्यराज खान का गुणगान करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सत्यराज मेरे लिए तुम तो पूजनीय हो ही, बल्कि तुम्हारे गांव का हर एक कुत्ता पूजनीय है। अब देखिए वैष्णव समुदाय में कुत्तों के विषय में जो चर्चाएं होती हैं वो ज्यादा प्रशंसनीय नहीं होती है, ऐसे उनको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है, बल्कि कुत्तों का उदाहरण बहुत प्रतिकूल भाव से भी लिया जाता है अक्सर। परंतु यहां चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सत्यराज तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मेरे लिए पूजनीय है। बंधन प्रिय ठाकुर, जैसे इतने सारे भगवान के भक्त हुए हैं और भगवान ने अपने हरेक भक्त के साथ बहुत ही पर्सनलाइज्ड आदान प्रदान किया। जब भगवान ने उनको पूजनीय माना, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो गिलहरी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, लक्ष्मण हो, जो कोई हो। जैसे रामायण में वर्णन है कि जब रामचंद्र जी को रावण का वध करना था, अब स्वयं साक्षात भगवान हैं, क्या वो इंडिपेंडेंटली रावण का वध नहीं कर सकते थे? परंतु रावण का वध करने के लिए उन्होंने अगस्त्य ऋषि से एक बाण मांगा। क्यों? क्योंकि अगस्त्य ऋषि को वो पूजनीय बनाना चाहते थे। तो बोरो किया, अगस्त्य ऋषि से एक बाण बोरो किया रावण के हृदय को भेदने के लिए। और वो बाण इतना भारी बाण था, बताना चाहते थे रामचंद्र जी कि केवल अगस्त्य मुनि ऐसे भारी बाण को झेल सकते हैं, उसका वजन। जिस बाण से रावण का वध हुआ अंततः हृदय भेद कर, उस अगस्त्य ऋषि द्वारा दिया गया वो जो बाण अगस्त्य हृदय, वो बाण उसका वजन सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा था। कल्पना कीजिए कि अभी सुमेरु पर्वत हम लोग ज्यादा सुने नहीं है, हिमालय तो सुने, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत को आप 100 गुना कर दीजिए। मैं एक अंदाजन बता रहा हूं आपको, वो है सुमेरु। तो ऐसे पर्वत का वजन, ऐसा वजनदार बाण अगस्त्य ऋषि धारण किया करते थे। और रामचंद्र जी ने अगस्त्य ऋषि से ये किराए पे लिया। यह है भगवान और भक्तों का आदान प्रदान। वही अगस्त्य ऋषि, क्यों मैं अगस्त्य ऋषि का उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि उनका संबंध गोवर्धन लीला से है। एक दफा अगस्त्य ऋषि, क्योंकि वो बड़े ऋषि साधु, तो प्रसादम का न्योता उनको मिला था। तो पंगत में बैठे हुए थे, तो प्रसादम जैसे ही उनका पूरा हो रहा था तो पंगत उठ गई। अब नियम के अनुसार इनको भी उठना पड़ा, तो जल न मिल पाया इनको, तो इनको प्यास लगी और वहां पर सब वाइंड अप हो गया और जल नहीं। अब तो इनको प्यास लगी हुई है, जल पीना है, तो उसी समय गोवर्धन लीला चल रही थी। अब देखो जल का गोवर्धन लीला से कितना गहरा कनेक्शन है, कितना जल वो वर्षा के रूप में गिर रहा था, एक एक बूंद खंबे के जितना बड़ा संवर्तक बादल। तो अगस्त ऋषि को अपनी प्यास बुझाने के लिए वो यहां पर आए ब्रज में, और उस समय भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया था, तो गोवर्धन के ऊपर पूरी वर्षा हो रही थी ये संवर्तक बादलों से, जो मैंने बताया एक एक बूंद खंबे के जितनी बड़ी, इतनी वर्षा गोवर्धन के ऊपर। और अगस्त ऋषि वहां पर पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अगस्त ऋषि को देखा तो अगस्त ऋषि प्यासे भगवान की ओर देख रहे हैं, तो भगवान ने गोवर्धन को थोड़ा टिल्ट किया। भगवान ने गोवर्धन को थोड़ा टिल्ट किया और सोचिए कि ये नायगरा फॉल्स या जितने भी बड़े बड़े फॉल्स हैं, क्या सामने रहेंगे जो वॉटरफॉल गिरा गोवर्धन से अब, और ऐसे पूरे झरने को अगस्त ऋषि पिए अपने प्रसाद के बाद प्यास बुझाने के लिए। तो भगवान किसी भी टुच्चे मुच्चे को पूजने नहीं मनाते। भगवान यदि किसी को पूजनीय मानते हैं तो वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उनके स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर गोवर्धन को भगवान ने पूजनीय माना है। तो दो कारण, एक रिकैक हम लेंगे पिछली बार का, तो दो कारण हमने लिए। गोवर्धन कोऑपरेट्स विद द प्लान ऑफ कृष्णा, गोवर्धन लिव्स टू सेल्फलेसली सर्व अदर्स। तो पिछली बार हमने यहां से शुरुआत करी थी, चरण एवं आचरण। चरण छूने योग्य कौन है, जो अपने आचरणों से अपनी योग्यता सिद्ध करे, वो चरण छूने योग्य हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक गांव में प्रवेश किया और उसने उस गांव के पहले नागरिक से पूछा, आर एनी ग्रेट मैन बॉर्न इन योर टाउन, कोई महान व्यक्ति तुम्हारे गांव में पैदा हुए हैं? तो इस व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, नो सर, ओनली बेबीज आर बॉर्न, ओनली बेबीज आर बॉर्न इन आर टाउन, हमारे शहर में केवल शिशु पैदा होते हैं। तो महान से महान जो भी कोई हो, पैदाइशी नहीं होता है महान, पैदाइशी हम सब शिशु ही पैदा होते हैं। तो शिशु से कोई शिशुपाल बन सकता है या वो पूजनीय बन सकता है। तो हमने पिछली बार ये चार लेवल लिए ह्यूमंस के, हिपोक्रेसी, आई वॉन्ट द ग्लोरी विच आई डू नॉट डिजर्व, उससे थोड़ा ऊंचा लेवल, दोनों भाई लगते हैं वैसे, बींग शेमलेस, मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा। ईमानदारी कौन, जिसके अंदर है आई एम सॉरी एंड आई वॉन्ट टू इंप्रूव, इंटेग्रिटी, माय वर्ड इज माय ऑनर. ऑनेस्टी मीन्स टू टेल व्हाट यू डिड. इंटेग्रिटी मीन्स टू डू व्हाट यू टेल. टू टाइप्स ऑफ ग्रेटनेस, primary, secondary. Primary means what you really are. Secondary means what you can do. Primary greatness makes one worshipable. ये जो मुख्य गुण किसी मनुष्य का होता है वो उसे पूजनीय बनाता है. Secondary makes one only famous. Primary greatness, what Krishna recognizes. Secondary greatness, what the world recognizes. ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किनके नजरों में क्या बनना चाहते हैं. अधिकांश ये जो कलयुग है जिसमें हम जी रहे हैं, कलयुग का विशेष एक लक्षण है दिखावा. कौन सा लक्षण है? दिखावा. आप जितना अच्छा दिखावा कर सकते हो उतना पूजनीय बनते हो. जैसे बॉलीवुड का ये जो एक्टर है ऋतिक रोशन, तो ये व्यक्ति बताया जाता है कि पूरे अब तक के बॉलीवुड के इतिहास में सबसे हैंडसम एक्टर माना जाता है. हर दृष्टिकोण से, लुक्स, फिजिक, सिक्स पैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, परफेक्ट परफेक्ट. परंतु हाल ही में मुझे पता चला कि इसने अपने जो वेस्ट से ऊपर का जो शरीर है उसको परफेक्ट बनाने के पीछे इतनी वर्जिश की कि उसका जो लोअर बैक है वो परमानेंटली डैमेज हो गया है, जो कि जनता को दिखता नहीं है. जो लोअर बैक है और उसका जो परमानेंट डैमेज है वो जनता को दिखता नहीं है. तो आजकल का समाज ये है कि जो दिखता है उसको आप इतना परफेक्ट दिखाओ, परंतु जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन जिसको कहते हैं, यदि रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर्ड है तो जितना भी सिक्स पैक है, ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स है, वो कब तक टिका रहेगा? और पब्लिकली गुणगान मिलता है, परंतु जैसे ही ऐसा व्यक्ति अपने प्राइवेट लाइफ में जाता है तब उसे उस दर्द का एहसास होता है. और वो दर्द का जो एहसास वो कर रहा है, उसको जो महसूस कर रहा है, जनता को उसके दर्द से कोई लेना देना नहीं है. जनता को क्या चाहिए? मनोरंजन. क्योंकि हम हमारे जीवन में इतने अकेले हैं, मायूस हैं, तो हमको मनोरंजन चाहिए. और तुम्हारा फिजिक, जो तुम्हारी एक्टिंग, जो तुम्हारा प्रदर्शन हमको मनोरंजन देता है, बस हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम नाचो, हमारे मनोरंजन के लिए नाचो. वो कहे भाई मेरा बैक चला गया तुम्हारे मनोरंजन को चलते चलते, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. यदि तुम नाच नहीं सकते किसी और को लाओ. यह है कलयुग. कलयुग क्या है? नाच बसंती नाच. यदि बसंती नहीं नाच सकती, दूसरी बसंती लाओ. तो मैं हाल ही में ये जो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ये एक्टर के विषय में, आप लोग तो बहुत अच्छी से वाकिफ हो गए इस एक्टर से देखते हुए कि ये कितना फेमस और कितना गुड लुकिंग और सब कुछ है, बट इन द सॉलिट्यूड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ ही इज हैविंग अ फ्रैक्चर्ड लाइफ. तो एक है प्राइवेट विक्ट्री और एक है पब्लिक विक्ट्री. कलयुग मतलब जस्ट गो फॉर पब्लिक विक्ट्री, पब्लिक विक्ट्री, पब्लिक विक्ट्री. क्या देख रहे हैं हम यहां पर? प्राइमरी सेकेंडरी. भगवान हमारी पब्लिक विक्ट्री को नहीं देखते, भगवान देखते हैं कि ये अंदर से विजयी हुआ है कि नहीं. एक बहुत सुंदर लीला है, भगवान श्री कृष्ण एक बार सोते हुए अर्जुन का नाम उच्चारण कर रहे थे नींद में. तो अर्जुन का नाम नींद में भगवान उच्चारण कर रहे हैं तो बलराम जी ने यह सुना. तो बलराम जी भगवान से पूछे कि अर्जुन में क्या ऐसी विशेषता है कि नींद में भी तुम अर्जुन का नाम ले रहे हो? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस अर्जुन? तो भगवान ने कहा कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं प्रदर्शित कर दिखाऊंगा. क्योंकि बलराम जी दुर्योधन को बहुत फेवर देते थे, तो भगवान अब अर्जुन और दुर्योधन दोनों को एक टेस्ट पर, एक कसौटी पर रखना चाहते थे ताकि बलराम जी भी देख ले कि सच्चा कौन है. तो टेस्ट क्या रखा? भगवान ने कहा कि आज की रात दोनों को सो जाने दो, सुबह जब दोनों उठेंगे तो दो चीजें दोनों महसूस करेंगे अपने अंदर. कौन सी दो चीजें? कि दोनों सबसे ज्यादा बदसूरत हो जाएंगे एक ही रात में, और उसके साथ साथ अंधे भी. कितना डेडली ये कॉम्बिनेशन है. पूरे विश्व का सबसे बदसूरत व्यक्ति और उसके साथ साथ अंधा. तो दोनों के ऊपर ये कर दिया गया, भगवान ने अपनी शक्तियों से दोनों के ऊपर ये कर दिया. अब जब सुबह हुई तो दोनों को जब ये पता चला तो भगवान बलराम जी को ले गए. अब हम दोनों के सामने प्रस्ताव रखेंगे, तुम जाओ दुर्योधन के पास तुम्हारा प्रिय, मैं अर्जुन के पास जाता हूं, या हम दोनों पहले अर्जुन के पास चलते हैं और फिर दुर्योधन के पास दोनों चलते हैं. तो पहले अर्जुन के पास गए तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन देखो दो चीजें हुई हैं ये इस रात को, पिछली रात को, कि तुम सबसे बदसूरत हो चुके हो और तुम अंधे हो चुके हो. तो मैं एक ही चीज ठीक कर सकता हूं अब तुम्हारी, या तो तुम्हें पूरे विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति बना दूं या फिर तुम्हारी दृष्टि. तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम यदि सबसे सुंदर होगे परंतु दृष्टि नहीं होगी, और तुम्हारे पास दृष्टि होगी परंतु तुम बदसूरत रहोगे. तो तुरंत स्पॉन्टेनियसली अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे दृष्टि चाहिए, क्योंकि मुझे सुंदर दिखना नहीं, मुझे परम सुंदर को देखना है. और दुर्योधन ने ठीक उल्टा मांगा कि चाहे मैं अंधा रहूं परंतु दुनिया मुझे सुंदर देखती रहे. इसको बोलते हैं दुर्योधन मेंटालिटी. At the expense of one's own blindness, he wanted that the world should रिकग्नाइज। इसलिए भगवान ने बलराम जी को कहा कि क्यों मैं हर समय अर्जुन को न केवल अपना सखा बल्कि इतना प्रिय, यहां तक कि अर्जुन को मैं पूजनीय मानता हूं, क्योंकि अर्जुन हर समय राइट चॉइसेस उसकी होती है, जैसे नारायणी सेना और स्वयं नारायण, उसमें अर्जुन ने भी जानते हुए कि भगवान कोई शस्त्र नहीं उठाने वाले हैं, और उस समय अर्जुन ये नहीं जानते थे कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये युद्ध के पहले की बात है, ये नहीं जानते थे, तो बिना अस्त्र शस्त्र उठाए मुझे केवल मेरे कृष्ण चाहिए, अर्जुन ने वो निर्णय, वो चयन अर्जुन का। इसलिए हम जो प्रसिद्ध लीला कहते हैं, जब अर्जुन ने वो चयन किया तो भगवान श्री कृष्ण और टेस्ट करने के लिए अर्जुन को थोड़ा चिढ़ाने लगे। जब दुर्योधन नारायणी सेना लेकर चला गया तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहते हैं, रे अर्जुन क्या किया तूने, हार निश्चित है तेरी, तू रहेगा हरदम उदास। हार निश्चित है अर्जुन तेरी, तू रहेगा हरदम उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, कोरी छांच रह गई तेरे पास। और भगवान को उत्तर दिया तुरंत अर्जुन ने, टिट फॉर टैट जैसे बोलते हैं। तो अर्जुन ने भी भगवान को कहा, जीत निश्चित है अवश्य ही मेरी, न रहेगा कभी उदास ये तेरा दास। जीत निश्चित है मेरी, न रहेगा कभी उदास ये तेरा दास। अरे माखन लेके मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो हम कहां पर किसको प्रसन्नता देना चाहते हैं वो निर्भर करेगा हमारा प्राइमरी ग्रेटनेस, what we really are। तो पिछले बार हमने कोऑपरेशन के ऊपर कि नियोफाइट लेवल का कोऑपरेशन किया है कि जब तक मेरा गुणगान हो रहा है तब तक वांछाकल्पतरुभ्यश्च, जैसे ही मेरी नाम प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची तुरंत हम सारे बंदूकें निकाल लेते हैं, तीर कमान निकाल लेते हैं, आज या तो तू नहीं या मैं नहीं, है ना। पहले क्या, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। जैसे कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती, लोग मिसाल देते हैं कि दोस्त हो तो दुर्योधन जैसा या कर्ण जैसा, मिसाल देते हैं दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। परंतु जब दुर्योधन को चित्ररथ ने बंदी बना लिया था इस लीला में, तो सबसे पहले जिसने पलायन किया आप जानते हैं वहां से, वो कर्ण था। सबसे पहले उसने पलायन किया वहां से। दुर्योधन जानता था कि भाई ये कर्ण जो है इसके अंदर पांडवों के प्रति आक्रोश है, तो मुझे कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, इसका जो युद्ध कौशल है और युद्ध कौशल के साथ साथ कर्ण जो पांडवों को अपना शत्रु मानता है, और कर्ण ने भी ये देख लिया कि दुर्योधन के शत्रु पांडव हैं, तो होता क्या है कि कॉमन एनिमी जब हो जाता है कि भाई तुम्हारा भी ये शत्रु है मेरा भी ये शत्रु है, चलो आ जाओ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तो कर्ण और दुर्योधन की जो दोस्ती वो किस पर निर्भर थी, उनके अंदर जो द्वेष था पांडवों के प्रति, पांडवों के प्रति जो द्वेष है उस पर आधारित उनकी मित्रता थी। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम जब किसी से मित्रता कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद क्या है, हमारी मित्रता की बुनियाद क्या है। यदि हमारी मित्रता कर्ण दुर्योधन की तरह है तो फिर अंत भी कर्ण दुर्योधन की तरह होगा। इसलिए हमने उदाहरण भगवान शिव जी का लिया था कोऑपरेशन में, कि शिव जी उन्होंने भगवान के मिशन में सहायता देने के लिए वो हलाहल विष को भी वो पी गए। ये ही नहीं, इससे भी ज्यादा भगवान शिव जी की एक जो लीला मोहिनी मूर्ति, जहां पर अब भगवान शिव जी, ये भगवान का मिशन हो चुका था, समुद्र मंथन की लीला हो चुकी थी, और ऐसे ही कैजुअली भगवान शिव जी देखना चाहते थे, मिलने गए। सुना था मोहिनी मूर्ति का आपका ये अवतार हुआ, मैं देख नहीं पाया परंतु सुना बहुत, तो जिज्ञासा की उन्होंने, जिज्ञासा हेतु गए, प्राइवेट मीटिंग थी, हालांकि पार्वती को भी लेकर गए थे परंतु बहुत ही प्राइवेट मीटिंग थी। जिज्ञासा थी मोहिनी मूर्ति का दर्शन करना है, तो भगवान ने ये सोचा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान मुस्कुरा भी रहे थे परंतु बहुत गंभीर अपनी अवस्था में थे भगवान, भाव गंभीरम, क्योंकि भगवान ने सोचा कि जो मैंने राक्षसों को मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रलोभित किया, वो मोहिनी मूर्ति से भगवान शिवजी प्रलोभित नहीं हो पाएंगे, इसलिए मुझे मेरी अंतरंगा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेरा सबसे पावरफुल वेपन है या सबसे पावरफुल शक्ति है, वो भगवान ने इस्तेमाल की, और फिर जो शिवजी को मोहिनी मूर्ति का रूप दिखाया। और यहां पर हम देखते हैं कि हाल क्या हुआ, अपने ही बीवी के सामने महादेव मोहिनी मूर्ति के पीछे ऐसे भागने लगे। और सोचिए, इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भगवान ने क्या किया, ये मोहिनी मूर्ति के रूप को भगवान शिव जी के जो अनुचर हैं, बड़े बड़े तपस्वी जो ओम नमः शिवाय का जाप किए हुए तपस्या में बैठे हुए थे, उनके सामने से दौड़ाया। तो ये सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुझे ये पास्ट टाइम इतनी इंस्पायरिंग लगती है मोहिनी मूर्ति भगवान शिव जी की, क्योंकि ये सब होने के बाद जो डिस्पोजिशन भगवान शिव जी का, वो सराहनीय है। वो केवल परम वैष्णव भगवान शिव जी ही ऐसी नम्रता दिखा सकते हैं। हमारे साथ कुछ नाइंसाफी होती है तो हम कैसे फुफकारते हैं सांप की तरह। सोचिए, यहां भगवान शिव जी यदि वो केस फाइल करें कि मुझे जलील किया मेरे ही शिष्यों के सामने, मेरी बीवी के सामने, मेरे शिष्य, मेरी बीवी, मेरे परिवार के सामने जलील किया, देख लूंगा विष्णु, देख लूंगा। तो होता क्या है कि हम लोग जब भक्ति में एक थोड़े से पद पर आ जाते हैं तो हम लोग फिर शुरू में आश्रय मांगते हैं, शुरू में नम्रता होती है, मासूमियत होती है, तो हम भक्ति में आश्रय मांगते हैं, वी सीक शेल्टर। और फिर जब हम किसी के आश्रय बन जाते हैं और हमारे साथ कुछ नाइंसाफी होती है तो हम इंसाफ मांगते हैं, जस्टिस, रादर देन टेकिंग शेल्टर वी डिमांड जस्टिस। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है इंसाफ, क्योंकि इंसाफ नहीं होता है। यह हमारा जो इन है वो साफ नहीं है, इसलिए इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। परंतु सही में प्रेरणास्पद है भगवान शिव जी का उदाहरण कि ये सब पूरी लीला होने के पश्चात उन्होंने जो गुणगान किया है भगवान विष्णु का, एक श्लोक कभी नहीं जहां पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर दोषारोपण किया हो या उन्होंने भगवान विष्णु को कहा हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, मैं तो केवल देखने आया था, प्राइवेटली आप दिखा देते, मुझे दौड़ाए क्यों यहां वहां। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लेंगे हमारी इस चर्चा में कि जब हमारी साधना भक्ति में हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमारा फॉलबैक ऑप्शन क्या है, और कठिन परिस्थिति तो आने वाली है। जब श्रील प्रभुपाद से प्रभुपाद के शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद व्हेन विल दीज प्रॉब्लम्स गेट ओवर, प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, व्हेन महाविष्णु विल इनहेल। व्हेन विल प्रॉब्लम्स गेट ओवर, व्हेन महाविष्णु विल इनहेल, एंड व्हेन ही विल एक्सहेल, मैं ऐड कर रहा हूं अब इसमें, when he will exhale the problems will also come out along with us, jo andar gaye hain problems hamare sath wapas aayenge, to hamara fallback option kya hai, fallback option matlab lifeline kya hai, hamare jeevan ki lifeline kya hai, hum hamare jeevan mein kisko poojaniya mante hain, jab hum vikat paristhiti mein hote hain to wo हमारी लाइफलाइन, जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना, सारे ऑप्शंस दिखा दिए गए, दिमाग नहीं चल रहा है, सारे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हैं, फाइनली क्या पूछा जाता है, लॉक किया जाए इसे पहले, कौन सी लाइफलाइन लेना चाहोगे, तो फिर वो कॉल करता है, फाइनली अपने लाइफलाइन को कॉल करता है, दैट इज अ लाइफलाइन कॉल। तो प्रश्न ये है कि यदि हम समृद्ध होना चाहते हैं या हम सफल होना चाहते हैं हमारी भक्ति में, तो हमारे व्यक्तिगत भक्तिमय जीवन में वो कौन लाइफलाइन कॉल वाला व्यक्ति है ऑन द अदर साइड, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हयग्रीव प्रभु श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हुए, बहुत सीनियर डिसाइपल हयग्रीव प्रभु, पहले शख्स थे जो प्रभुपाद को न्यूयॉर्क स्ट्रीट पर मिले। पूरे इस्कॉन में जो सबसे पहले व्यक्ति श्रील प्रभुपाद को रोक कर पूछे कि आप कहां से हैं, क्या कर रहे हैं, वो हॉवर्ड व्हीलर हयग्रीव प्रभु बने आगे चलकर। तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं श्रील प्रभुपाद के लिए की, परंतु फिर कुछ वर्षों पश्चात, प्रभुपाद के जाने के पश्चात, वो थोड़े भ्रमित हुए, इस्कॉन उन्होंने छोड़ दिया। परंतु जब उन्हें कैंसर हुआ, जानलेवा ये बीमारी जब उन्हें हुई, तो उनके अंतिम दिनों में वो फिर भक्ति में आए, फर्स्ट इस्कॉन डिवोटी, लेफ्ट इस्कॉन, केम बैक ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, और वो राधानाथ महाराज उनसे मिलने गए। तो राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि जब वो हयग्रीव प्रभु से मिलने गए, अब हयग्रीव प्रभु के कुछ ही चंद दिन बाकी थे जीने के, कैंसर से पीड़ित डेथ बेड पर लेटे हुए हयग्रीव प्रभु अपने रियलाइजेशन सुना रहे हैं. कौन है ये? द फर्स्ट डिवोटी ऑफ इस्कॉन. वो कहते हैं राधानाथ महाराज से, समटाइम्स आई हैड दिस डाउट, डज कृष्णा रियली एग्जिस्ट? But now when I am suffering from this disease, cancer, I left Krishna, I left devotees, but I couldn't leave my own karma. We can leave Krishna or we can try to leave Krishna, but we cannot leave our own karma. So ye unka realization, I left devotees, I left Krishna, but I couldn't leave my karma. Now, at this stage of my life, the only thing which is helping me and which will help me beyond this life are all the devotees who are surrounding me and chanting Hare Krishna. Aur unhone kaha Radhanath Maharaj se, I will tell you Maharaj, only devotees can become fallback option for a sadhaka. Chahe hum kitna bhi yahan wahan bhraman kar kar aa jaye, brahmand bhramite, ant samay kyon hame bhakton ki zarurat honi chahiye? Chahe wo bhakt hamare liking ke ho, hamare wavelength ke ho ya na ho, why we need devotees all around in our life? Because at the time of our death, only devotees will come to chant at the crematorium. मैंने अपने आंखों से देखा, हमारे कुछ भक्त जब नासिक में यहां पर उन्होंने शरीर छोड़ा, जैसे हमारे कृष्णनंद प्रभु के पिताजी, तो हम जब स्मशान घाट गए यहां अमरधाम, मैंने देखा कितने शव यहां पर वहां पर आ रहे थे, जा रहे थे. उसी समय और चार शव वो वहां पर आए जलने के लिए, और उनके भी परिवार वाले आए. और मैं देख रहा था कि हमारे ये कृष्णधन प्रभु के पिताजी, हमारे सारे डिवोटीज गए और सारे डिवोटीज चैंटिंग कर रहे हैं वहां पर, नरसिंह प्रणाम, हरे कृष्ण महामंत्र, और सब लोग हम लोग अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. और मैंने देखा कि क्या दुर्भाग्य है बाकी शवों का, कि उनके जो सगे संबंधी वहां पर आए, कोई टाइम देख रहा है, कोई सेलफोन चेक कर रहा है कि कब जल्द से जल्द निपटे और निकले यहां से बाहर. और उसके ऊपर मैंने देखा कि क्या सौभाग्य उस शव का भी जो इस समय पर आया जब हमारे ये भक्त उस स्मशान घाट पर पहुंचे, कि बाकी भक्त का कीर्तन उस शव को अर्पित हो रहा है. और एकमात्र योग्यता उनकी क्या थी, कि उन्होंने यह स्वीकृति दी कि मरने से पहले मैं डिवोटीज के एसोसिएशन में रहूं. तो हयग्रीव प्रभु ने महाराज को यही कहा, महाराज आई हैव रियलाइज्ड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड बीइंग अवे फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस, the only fallback option for a devotee should be and will be devotee association. ye hai lifeline. George Harrison, Hayagriva Prabhu to bahar ki duniya mein koi itne prasiddh vyakti nahi the, parantu George Harrison jo Beatles ke pramukh wo gavaiya aur wo guitarist, जॉर्ज हैरिसन के अंतिम क्षण, क्योंकि वो जब बूढ़े हो गए, गा नहीं पाए, यही है संसार का नियम, आप मनोरंजन देना बंद कर दो, ये संसार आपको साइड में कर देगा, दूसरा जो मनोरंजन देगा उसको बिठा देगा. याद है स्टायरोफोम कप, लास्ट टाइम हमने स्टायरोफोम कप का एग्जाम्पल दिया था, कि जब तक पद है, पदवी है, यश है, शान शौकत है, तब तक मालाएं हैं, तालियां हैं. जैसे ही पद से च्युत हुए, शान शौकत चली गई, मालाएं चली गई, तालियों के बदले गालियां, या फिर अब और किसी को बिठाओ यहां पर, और हमारी औकात क्या रह जाती है, स्टाइरोफोम कप। तो जॉर्ज हैरिसन अपने अंतिम दिन केवल दो व्यक्ति जॉर्ज हैरिसन के डेथ बेड के निकट थे, मुकुंद महाराज और श्याम सुंदर प्रभु। जॉर्ज हैरिसन जो कि इतना बड़ा वो सुपरस्टार था एक जमाने में, अंतिम दिन कोई नहीं था डेथ बेड के पास, ओनली टू डिवोटीज, जो कि जब लंदन में प्रभुपाद ने इनको भेजा था तो श्याम सुंदर प्रभु ने जॉर्ज हैरिसन को सबसे पहले प्रचार किया था और मुकुंद महाराज इन दोनों ने। तो अमेरिका से ये दोनों आए, क्योंकि लंदन में उसने अपना शरीर छोड़ा जॉर्ज हैरिसन। तो फॉल बैक ऑप्शन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन का फॉल बैक ऑप्शन क्या है। अब यदि हम ये दो एग्जाम्पल लें, दुर्योधन और अर्जुन का, तो दुर्योधन के जीवन में जब भी विकट परिस्थिति आई तो दुर्योधन का फॉल बैक ऑप्शन क्या हुआ करता था, शकुनी। और अर्जुन के जीवन में जब भी विकट परिस्थिति आती तो अर्जुन का फॉल बैक ऑप्शन भगवान श्री कृष्ण। अब देखो कि यदि बाह्य दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो दुनिया को भी बताने में थोड़ा आपको गर्व महसूस करेगा कि आपके फॉल बैक ऑप्शन कृष्ण है, है ना? कुछ दुनिया को भी दिखाने लायक के स्टैंडर्ड के भगवान है। नहीं तो आजकल लोग पता नहीं किन को भी भगवान बोल देते हैं, पेट निकला हुआ इतना, बिना धोई हुई दाढ़ी, वो उनके फॉल बैक ऑप्शन होते हैं। रामायण में ये दो उदाहरण बहुत इनसे शिक्षा लेने लायक है, एक है कैकेयी और एक है विभीषण। अब देखो कैकेयी, उसने अपना अधिकांश जीवन कहां बिताया, अयोध्या में, परंतु कैकेयी ने बहुत निकट से संग किसका किया, मंथरा का। तो कैकेयी ने अयोध्या में रहते हुए अपना फॉल बैक ऑप्शन किसको रखा, मंथरा को। अब मंथरा वो एक ऐसी कुबड़ी स्त्री कि अयोध्या में बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं था कि ये कहां से आई थी, उसका ओरिजिन क्या है। वो तो जब भगवान को वनवास मिला और पता चला कि ये सब किसकी करतूत है, तो सब पूछने लगे कि ये मंथरा को वीजा किसने दिया। ये अयोध्या में एंट्री कैसे ली ये मंथरा, माए बाप कौन है इसका, कौन सी जाति की है, कौन सी प्रांत की है, कहां से आई ये। तो जिसको अधिकांश कोई जानता नहीं था, परंतु कैकेयी हर समय अपना दिल खोलती थी मंथरा के सामने। इसलिए भक्तों के समुदाय में ये सीखने योग्य बात है कि यदि हम मंदिर में भी रह रहे हो परंतु हमारा दिल खोलेंगे मंथरा जैसे लोगों के सामने, तो क्या बनते हैं, हम राम द्वेषी। और विभीषण का दूसरा एग्जाम्पल है कि विभीषण लंका में रहते हुए राम भक्त बने रहे। तो यदि हमारा फॉलबैक ऑप्शन सही है तो चाहे लंका हमारे चारों ओर हो, हम विभीषण की तरह राम भक्त रहेंगे, और यदि हमारा फॉलबैक ऑप्शन मंथरा है तो अयोध्या में भी रहते हुए हम राम को बहिष्कृत कर देंगे हमारे जीवन से. दिस इज द पावर ऑफ फॉलबैक ऑप्शन. आप किसका संग कर रहे हैं अंदर से. कई कई ने अंदर से अपना संग दिया और लिया किससे, मंथरा. और जो सबसे पूजनीय अयोध्या के, उनको वनवास दिला दिया इस मंथरा ने. सोचो कितनी शक्ति है इस मंथरा के अंदर, कि पूर्ण पुरुषोत्तम जिनके राज्याभिषेक की तैयारी पूरा अयोध्या कर रहा था, इतने बड़े पराक्रमी दशरथ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, सब कुछ न कर सके, ये मंथरा की जो करनी उसके सामने. इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए किससे, कि विकट परिस्थिति में हम हमारे जीवन में किसको फॉलबैक ऑप्शन रखे हैं. इफ शकुनी एंड मंथरा विल बी अवर फॉलबैक ऑप्शन, अवर एंड विल बी ऑल्सो लाइक कैकेयी एंड दुर्योधन. बट इफ विल बी लाइक अर्जुन एंड विभीषण, देन यस द एंड विल बी ग्लोरियस. महाभारत में ये भी एक ऑब्जर्वेशन करने योग्य बात है. ये दो सारथी हुए महाभारत के, अर्जुन और कर्ण के सारथी. तो हम सब जानते हैं अर्जुन के सारथी तो पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण. कोई जानता है कर्ण का सारथी कौन था? शल्य या शाल्य. तो ये कर्ण का सारथी. अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है महाभारत से, कि जब अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर पा रहा था और अब दुर्योधन चाहता था, क्योंकि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए हैं, कर्ण अब रणभूमि पर आ गया है, तो दुर्योधन कर्ण के पास जाता है, बोलता है तू कर क्या रहा है? अरे इसलिए तुझे अंगराज दिया था, इसलिए तुझे इतना खाया पिलाया, इतनी दोस्ती निभाई तेरी, ये अर्जुन को कब मारेगा? तब कर्ण दुर्योधन से कहता है कि मैं अर्जुन पर विजयी तब तक नहीं हो पाऊंगा जब तक मुझे एक योग्य सारथी न मिले. क्योंकि सबने देख लिया था, कर्ण ने तो विशेष देख लिया था, कि अर्जुन है, बहुत अच्छा धनुर्धर है, परंतु उसके ऊपर अर्जुन की जो विशेष शक्ति है, वो कौन सी शक्ति अर्जुन को बचाए रखी है? वो अर्जुन का जो सारथी है. कि हां, कहने को तो वो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहा है, हाँ? बोलने को तो गपचुप बैठा है, लेकिन सारा प्रोटेक्शन, सारी शक्तियां वो अर्जुन को वहीं से मिल रही है. तो होता है ना कि जब एक ही फील्ड के होते हैं दो, तो वो लोग हर चीज कंपेयर करते हैं. तो कर्ण सेम फील्ड का था, सेम डिपार्टमेंट, तो वो भी कंपेयर कर रहा था कि मुझे भी सारथी चाहिए, अच्छा कोई मेरे स्टैंडर्ड का सारथी होना चाहिए. तो दुर्योधन ने कहा कि अरे भाई, तो तेरे लिए भगवान को अवतार लेना होगा. कौन कौन बनेगा भाई तेरा सारथी? तो कर्ण कहता है शाल्य. तो दुर्योधन बोला असंभव, अरे वो तो राजा है बड़ा, इतना बड़ा इंसल्ट. तो कर्ण ने बोला जब तक शाल्य को मेरा सारथी नहीं बनाओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा अर्जुन के सामने. तो दुर्योधन वहां पर, वो खाली मैनेजमेंट कर रहा था फाइनली युद्ध में, वो सब अपना भूल चुका था कि गधा कैसे चलाते हैं, वो खाली मैनेज कर रहा था। तो अभी उसको मैनेज करना था कि ये शाल्य को कन्विंस करें कि ये कर्ण का सारथी बने। तो कैसे, तो शाल्य को उसने कहा कि देखो भाई मना मत करना, इज्जत का सवाल है, हाँ, और जीवन का सवाल है, इसलिए मैं हाथ जोड़कर दंडवत कर कहता हूं कि कुछ समय के लिए कर्ण का तुम सारथी बन जाओ। तो शाल्य ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर सारथी बनूंगा कर्ण का, क्योंकि वो भी कंपेयर कर रहा था कि भगवान कृष्ण जो सारथी बने तो भगवान कृष्ण ने जो जो उपदेश दिए तो मैं उपदेश दूंगा कर्ण को, और कर्ण को भी जैसे कि अर्जुन ने उपदेश सुना है तो मैं भी मेरी गीता सुनाऊंगा। तो अब दुर्योधन फुटबॉल की तरह वापस कर्ण के पास जाता है, बोलता है देख भाई उसने कह दिया है कि वो चुप नहीं रहेगा, वो बोलता रहेगा, तो तू सुनता रहना, थोड़ा श्रवण भी किया कर, तू थोड़ा सुनना, वो बोलेगा तू सुनना, चुपचाप सुन लेना, जो भी तुम आपस में अर्जुन को खत्म करो। तो मुझे अच्छा समाचार मिलना चाहिए, तो जो भी उसकी शर्त है मान लेना। तो अब यहां पर शाल्य जब कर्ण का सारथी बनता है, तो जैसे ही अब कर्ण शाल्य से कहता है कि अर्जुन जहां पर है उस दिशा में रथ को ले चलो, तो शाल्य बोलता है कर्ण तू क्या सोचता है कि तू अर्जुन की ओर से, तू अर्जुन के ऊपर जीत पाएगा? शुरू हो गया यहां पे। तो शाल्य ने अपनी शर्त रखी थी तो बोलना शुरू किया। अब यहां पर कर्ण चिल्लाकर कह रहा है कि मैंने जो बोला है वो करते रहो, तुमको जो बड़बड़ करना है रास्ते में तुम बोलते रहना, लेकिन रथ को उस दिशा में ले जाओ। अरे अर्जुन के दिशा में इस रथ को ले जाना मतलब आत्महत्या करना है। इस प्रकार से शाल्य शुरू करता है बताना, और वो हांक भी रहा है, रथ को हांक रहा है, उस दिशा में ले जा रहा है, लेकिन बोल रहा है। जब कोई मूर्ख व्यक्ति अपने विनाश को नहीं देखता तो विनाश काले विपरीत बुद्धि का ज्वलंत उदाहरण है ये कर्ण। ऐसे बोलते हुए रथ को ले जा रहा है शाल्य। और कर्ण सुन भी रहा है लेकिन उसको सहन नहीं हो रहा है, आग बबूला हो रहा है वो। और शाल्य फिर कर्ण को कहता है अरे मद्र देश के जो होते हैं वो तुझ जैसे घटिया ही किस्म के लोग होते हैं। तो कर्ण को जब ये कहा कि मैं घटिया किस्म का हूं, तो कर्ण ने अपने तीर कमान निकाल लिए अब शाल्य को खत्म करने के लिए। तब फिर उसको ध्यान में आया कि अरे मुझे सारथी नहीं रहूंगा, मेरे साथ रहेगा तो फिर मैं कैसे युद्ध करूंगा अर्जुन के साथ। तो फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर शाल्य कर्ण से कहता है कि अर्जुन जो है, अर्जुन और तुम में अंतर क्या है मैं बताता हूं। शाल्य कहता है यू सिंपली स्पीक बिग थिंग्स, अर्जुन डज बिग थिंग्स। है ना, जैसे एक हमारे नरेंद्र मोदी हैं दिल्ली में और एक दूसरे हैं दिल्ली में। थोड़ा कंटेम्पररी एग्जाम्पल देना चाहिए। तो शाल्य ने कहा अर्जुन ही डज बिग थिंग्स, यू सिंपली स्पीक। और यहां पर अब वो लोग निकट पहुंच रहे हैं तो शाल्य एक स्टोरी सुना रहा है। सोचो युद्ध रणभूमि के बीच में, अब ये इतना इंटेंस माहौल है उसमें ये स्टोरी सुना रहा है। तो शाल्य बोलता है मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूं। तो शाल्य शायद वो कोई प्रीचर टाइप का था, तो सारे एग्जाम्पल स्टोरी के साथ उसने भी सोचा है कि मेरी भी गीता पब्लिश होनी चाहिए। तो स्टोरी क्या सुना रहा है कि एक बार एक जंगल में एक कौवा था, और वो कौवा बहुत गुरूर था उसको अपने ऊपर कि मिज जैसा कोई उड़ नहीं सकता। तो कौवा अलग अलग दिशा में टर्न लेते हुए, कौओं को आपने देखा होगा कि कभी ऐसे उड़ अचानक टर्न ले लेगा इधर उधर ऐसे, और काव काव करते करते आवाज करते करते उड़ते हैं कि देखो मुझे भी देखो मैं भी उड़ सकता हूँ ऊपर उड़ सकता हूँ। तो ये कहा कि ये कौवा इतने गुरूर से उड़ता था कि बाकी जो पशु थे उस वन के उस जंगल के, तो वो इतना इससे परेशान हो गए। तो उन्होंने इस कौवे को कहा कि अरे तुझे पता है, एक तो तू काला है, तू जितना आवाज करता है उतना ज्यादा लोग तेरा कालापन देखते हैं, और उड़ने की तो बात कर रहा है, हम्स जो है हम्स के सामने तो कुछ भी नहीं है, एक बार उसे मुकाबला कर ले फिर पता चल जाएगा कि कौन सबसे अच्छा उड़ सकता है। अब ये स्टोरी शाल्य सुना रहा है कर्ण को, कहां पर? युद्ध के बीच में, और कर्ण को सुनना पड़ रहा है, स्टोरी भी बीच में सुनना पड़ रहा है। तो स्टोरी में फिर आगे हुआ कि इन दोनों का मुकाबला हुआ, तो मुकाबला कहां पर कि समुद्र को कौन पार कर सकता है, कौवा और हंस दोनों समुद्र के तट पर है कि समुद्र को कौन पार कर सकता है। तो कौवा उसने बहुत डींगे मारी कि अरे तू देखना मैं कैसे समुद्र को पार करता हूं, इंग्लिश चैनल पार करता हूं कैसे। तो यहां पर दोनों की उड़ान हुई शुरुआत, और कौवा आधा रास्ता भी नहीं, उसके भी पहले कौवा जो है वो हाँपने लगा हाँपने लगा हाँपने लगा हाँपने लगा, और हम्स उड़ता जा रहा है उड़ता जा रहा है। फिर कौवा अब गिरने वाला था, वहां पर तो कुछ नहीं सहारे के लिए, उसको तैरना भी नहीं आता। तो फिर भीख मांगने लगा वो हमसे कि तेरे पीठ में मुझे बिठा ले तो मैं मर जाऊंगा। तो शाल्य कर्ण से कहता है कि अर्जुन वो हंस है और तू वो कौवा। तो मैं ये क्यों प्रसंग सुना रहा हूं महाभारत का, कि कल्पना करो एक रथ जहां पर जो कि भगवत गीता का कवर पेज बनता है, पूजनीय होता है वो रथ, जहां पर पार्थ और पार्थ सारथी की पूजा की जाती है, और उन दोनों का संबंध भगवान कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप देखो क्या बना। और यहां पर दूसरा रथ ये कर्ण और शाल्य का रथ। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हम भी एक ही रणभूमि पर होंगे, दोनों एक ही रणभूमि पर थे, अर्जुन और कर्ण एक ही रणभूमि पर थे, परंतु सारथी अलग होने के वजह से दोनों के रथों का हाल क्या हुआ, या उनके रथों के दिशा या गंतव्य स्थान क्या हुआ। इसलिए रणभूमि पे तो रहना है, हम सबको रणभूमि पे रहना है और ये युद्ध लड़ना है, परंतु निर्णय क्या लेना है कि हमारे सारथी किसको बनाना है। यदि हमने शाल्य जैसों को सारथी चुना है तो फिर हर समय रथ पर झगड़े होते रहेंगे। कर्ण और शाल्य वहां पर कोई दिव्य संवाद नहीं हो रहा था, वहां पर केवल झगड़े 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 हो रहे थे। और ये रथ जहां पर अर्जुन और कृष्ण, हालांकि अर्जुन विषाद में गए, अर्जुन रो रहे थे, विपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, ये सब कुछ उनके अंदर दिख रहा था, ये सारे लक्षण, त्रस्त होने के सारे लक्षण। परंतु यदि एक लाइन में कहा जाए कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उस रथ पर जो विराजित, हमारे जीवन में यदि हमें उनसे प्रेरणा लेनी है तो ये प्रेरणा लेनी है. ओनली अ स्माइलिंग कृष्णा कैन सेव अ क्राइंग अर्जुन. वी माइट बी लाइक क्राइंग अर्जुन बट वी हैव टू लुक फॉर स्माइलिंग कृष्णा. यदि हम त्रस्त हैं और हम दूसरे त्रस्त के पास जाते हैं, अक्सर क्या होता है डिवोटी कम्युनिटी में कि मेरे अंदर इतनी काम वासना क्रोध वगैरह है, अच्छा मेरे अंदर भी, अच्छा तेरे अंदर भी है, चला आजा बैठते. तो यदि दो त्रस्त व्यक्ति वो लोग एक दूसरे का संग करते हैं तो हुआ क्या है, क्राइंग अर्जुन एसोसिएटिंग विथ क्राइंग कृष्णा. अभी कल्पना करो कि अर्जुन रो रहे हैं, उसके साथ साथ भगवान भी बैठ के रोने लगे, अर्जुन मैं भी मायूस हो रहा हूं तुम्हारे साथ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रथ हाँकू या ना हाँकू, अर्जुन ने बोल दिया कि मैं गांडी उठाऊं या ना उठाऊं, तो अगर भगवान भी बोलने लग जाए कि पता नहीं मुझे भी रथ चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए. जैसे दो व्यक्ति दलदल में फंसे हुए हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दलदल जानते हैं ना, तो दलदल में अगर कोई गिरा हुआ है तो उसकी मदद कौन कर सकता है जो दलदल के बाहर है. जैसे ये एक स्टोरी से हम अंत करेंगे आज का प्रवचन, कि अश्वत्थामा ने फाइनली सारे पांडवों को मारने के लिए, क्योंकि अश्वत्थामा भी बहुत द्वेष रखता था पांडवों से, क्यों, क्योंकि उसके पिता ज्यादा फेवर करते थे अर्जुन को, मेरे खुद के पिता, मेरा खुद का खून, वो किसी और को फेवर कर रहा है. तो अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र छोड़ा. अब अश्वत्थामा वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको केवल अस्त्र, ऐसे बड़े बड़े अस्त्र वो लेके रखा हुआ था और उसको वो अस्त्र छोड़ने आते थे, वापस रिट्रीव करना नहीं आता था उसको. तो अधकुचड़ा ज्ञान था उसके अंदर, इस प्रकार वो ज्यादा डेंजरस होते हैं लोग. तो उसने वो नारायण अस्त्र छोड़ दिया. अब ये नारायण अस्त्र बहुत ही टेरिबल अस्त्र पांडवों की ओर छोड़ दिया. तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि नारायण अस्त्र आ रहा है तो भगवान श्री कृष्ण चिल्लाए, सभी पांडवों को चिल्लाकर कहे कि तुरंत सब लेट जाओ रणभूमि पर, दंडवत करो, नतमस्तक हो जाओ इस नारायण अस्त्र के सामने. तुरंत अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये सब दंडवत अपना करने लगे. भगवान कृष्ण जैसे ही बोल दिया सब दंडवत करने लगे हाथ जोड़ के, पूरा साष्टांग भीम को छोड़कर. भीम ने कहा मैं किसी अस्त्र शस्त्र के सामने दंडवत नहीं करूंगा. तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भीम वो नीचे गिर नहीं रहे, दंडवत नहीं कर रहे, तो भगवान कूदे भीम के ऊपर. सोचो, कल्पना करो कि भगवान, कई बार क्राइसिस सिचुएशन में करना पड़ता है, ये था क्राइसिस मैनेजमेंट. तो भगवान ने भीम को कहा कि अरे भाई तू बाद में बहुत से अस्त्र शस्त्र मिलेंगे लड़ने के लिए, ये नारायण अस्त्र है, मैं नारायण हूं, मैं बोल रहा हूं दंडवत कर. और भीम ने जब भगवान का ये रूप देखा तो भीम वो नारायण अस्त्र से ज्यादा नारायण से डर गए. तो भगवान चढ़ गए भीम के ऊपर, दंडवत कर, दंडवत, पूरा लेट गए, लंबा हो गए भीम भी. तो एक साथ लाइन में सारे पांडव, और जैसे ही नारायण अस्त्र के सामने ये सारे दंडवत किए, नारायण अस्त्र की सारी शक्ति क्षीण हो गई. तो भगवान ने पांडवों को कहा कि नारायण अस्त्र के सामने जब कोई नतमस्तक हो जाता है, अर्थात नम्र बनता है, तो नारायण अस्त्र उस पर कभी प्रहार नहीं करता। तो लेसन क्या है, भगवान ये लेसन सिखा रहे हैं, नॉट ऑल प्रॉब्लम्स शुड बी फॉट, नॉट ऑल एनिमीज शुड बी रिटेलिएटेड। भगवान ये बता रहे हैं, देर विल बी मेनी एनिमीज, देर विल बी मेनी वेपन्स वेर यू हैव टू फोल्ड योर हैंड इन ह्यूमिलिटी एंड से तेरा गधा आगे मेरा घोड़ा पीछे। क्या कह सकते हैं, तेरा गधा आगे मेरा घोड़ा पीछे। नारद मुनि हिरण्यकश्यपु के सामने ऐसे खड़े होते थे। कोई पूछेगा क्यों, हमारे आचार्यों ने सुंदर उदाहरण दिया कि जब सुअर गटर से बाहर निकले, पूरा लतपत गटर के पानी से एकदम फ्रेश बाहर नहा के आया, हाँ अभी गमछा भी लेके नहीं गया वो, पहुंचा भी नहीं अपने आप को, तो गटर के पानी से पूरा, कभी कभी आपने सुअरों को देखा होगा एकदम ऐसे बाहर निकलते हैं कि जैसे अभी सोना करके आ रहे हैं बाहर, पूरा गटर से बाहर सुअर जब आता है वो टिप टिप गटर का पानी बरसा, तो गटर का पानी बरस रहा है सब इधर उधर। तो आप यदि बुद्धिमान हो तो आपको क्या करना चाहिए, हाथ जोड़ के उसको रास्ता देना चाहिए, जा भैया। यदि आप घमंड में बोलो मैं नहीं दूंगा रास्ता, तो फिर वो सुअर एक बार झड़क देगा अपने आप। तो ये आचार्य ने उदाहरण दिया है, नॉट ऑल एनिमीज शुड बी रिटेलिएटेड विथ वेपन। ये महाभारत की स्टोरी से उदाहरण भगवान ने सिखाया, जैसे ही अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र छोड़ा, भगवान ने कहा सब लोग लेट जाओ नीचे, दिस शुड बी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो मैनेजमेंट नीतियां हैं वो बहुत प्रैक्टिकल है। भगवान कृष्ण कभी भी कोई भी पॉलिसीज इंपल्सिवली नहीं इंप्लीमेंट किए, उन्होंने बहुत सोच समझ के कि किसके सामने अस्त्र शस्त्र उठाना चाहिए, किसके सामने हाथ जोड़ के विनम्र हो जाना चाहिए। इसलिए यहां पर हम ये देख रहे हैं कि अर्जुन का फॉल बैक ऑप्शन अर्जुन ने चुना, अर्जुन को पता भी नहीं था उस समय कि ये जो मैं चुन रहा हूं भगवान श्री कृष्ण को, तो फाइनली भगवान श्री कृष्ण को चुनने के वजह से क्या उपलब्धियां मुझे प्राप्त होंगी। इसलिए यदि हम एकनिष्ठ भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं तो अर्जुन की तरह चाहे नारायणी सेना सामने रखी जाए, चाहे हमारे सामने कितने भी प्रलोभन रखे जाएं, तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बनना है तो गंगा की तरह भक्त बनो। गंगा जब गोमुख से निकलती है तो वो किसी को रास्ते में पूछती नहीं कि समंदर का रास्ता कहां है। क्योंकि उसका प्रेम उसके गंतव्य स्थान पर है। तो यदि हम एकनिष्ठ भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं तो हमारा गंतव्य स्थान यदि क्लियर है तो हमें यहां वहां प्रलोभित होकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि गंगा, जैसे कि अर्जुन, जैसे कि विभीषण, वरना कैकेयी की तरह हम अयोध्या में भी रह रहे होंगे तो भगवान श्री राम को निष्कासित कर देंगे। किसके संग से, मंथरा के संग से। और ये है हमारे आज के सत्र का निष्कर्ष कि भगवान जिसको पूजनीय मानते हैं हमारे लिए वो पूजनीय होने चाहिए और हमारे जीवन में वही हमारे लाइफलाइन या हमारा फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका, टिप्पणी? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी
इस ग्रह शिक्षाष्टकम प्रभु की। हरे कृष्णा। को सूचना इस प्रकार से है, आज का जो ब्रेकफास्ट प्रसादम है वो हमारे ग्रेप सिटी के हरीश प्रभु जो है इन्होंने स्पॉन्सर किया है, तो उनको हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरी बोल बोल के। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। और जैसे हमारे मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ रही है तो प्लेट्स कम पड़ रहे थे, तो हमारे धुमाड़ माता जी और प्रभु जी और इनके परिवार ने हमारे सारे भक्तों के लिए 100 प्रसादम प्लेट स्पॉन्सर किए हैं, तो उनको भी धन्यवाद देंगे हरी बोल बोल के। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। किचन से जानकारी आपको की और की सूचना है कि हमारे जो संडे भागवतम क्लास जो है उसको वो देख रहे, कई सारे भक्त लेट आ रहे हैं, इसके लिए उन्होंने कूपन सिस्टम का भी शुरुआत कर दिया है, तो जो भक्त 9 बजे के बाद आएंगे तो कृपया वो विभूति प्रभु से मिलके बाद में प्रसाद ले सकते हैं। और जन्माष्टमी कलेक्शन बुक्स आप अपने काउंसलर से ले सकते हैं, और किसी भक्त के कोई काउंसलर अभी तक नहीं है तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं और उनसे चर्चा करके रिसीट बुक ले सकते हैं। हरे कृष्ण।